फिर इसके बाद अब आप देखें कि हिजरी कैलेंडर शुरू हो जाता है। आप यहाँ से भी एक बड़ा अहम नुक्ता लोगों को बता सकते हैं कि हमारा हिजरी कैलेंडर कब से शुरू हो रहा है, जिसको इस्लामी कैलेंडर हम कहते हैं ना, हिजरी कैलेंडर क्यों कहते हैं, फिर उसको नबी कैलेंडर कह के अल्लाह के नबी की मोहम्मदी कैलेंडर कह दें। आप 571 ईस्वी के साथ नंबर एक कर दीजिए, नहीं, जिस दिन हिजरत की उससे हुआ है। और ये कब फैसला हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आता है कि ये पहली दफ़ा हिजरी कैलेंडर बना। और जब फैसला हुआ कि क्या करें, किसी ने कहा कि आपकी विलादत के दिन से शुरू कर लेते हैं इस्लामी कैलेंडर का, नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर जिसे नबुवत मिली उस दिन से करते हैं, कहा नहीं वो तो हालात ही इतने बुरे थे, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सके हम। अच्छा चलो ठीक है, हाँ हिजरत से इस्लाम को इस्तेहकाम मिला था तो हम फिर हिजरी कैलेंडर तब से बनाते हैं। तो लिहाजा अब इससे आगे सारी डेट्स जो भी हैं वो हिजरत के साथ चलेंगी। फिर उसके बाद देखिए, 2 हिजरी में गज़वा अबवा हुआ, ये भी रबी अव्वल में हुआ था। आप में से ये भी किसी को पता, अबवा नाम का गज़वा भी फौरन ही हो गया था, यानी तकरीबन 2 साल भी नहीं पूरे हुए थे कि उसके अंदर शुरू हो गया था। फिर गज़वा बबात, गज़वा सफवान, बदर उला, गज़वा ज़िल अशीरा, गज़वा बदल उल कुबरा, गज़वा बनु कैनका, गज़वा स्वैक। स्वैक जो ना, ये सत्तुओं को कहते हैं, सत्तू, इसमें दुश्मन जो थे वो बहुत सारे सत्तू छोड़ के भाग गए थे, तो मुसलमानों को माले गनीमत में जो मिले तो उससे फिर इसको गज़वा स्वैक कहा गया। फिर गज़वा बनु सुलैम जैसे अहम गज़वात पेश आए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की 3री नाकाम कोशिश की गई। कितने साल हुए आपको एक नया मुल्क बनाए हुए? 2 साल। और कितनी जंगें लगीं दूसरे ही साल में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तकरीबन 9 जंगें अगले ही साल लगी। हम कहते हैं कि पाकिस्तान बना, फिर उसके इतने साल बाद जंग लगी, हमारे रिसोर्सेज ही नहीं थे, हम कैसे अपनी कामयाबी लेते, जंगें नहीं जीतवाती। असल देखिए कि इतनी चोटें पड़े हैं एक अच्छी सी मुमलिकत पे तो क्या हालात होंगे। कौन सी चीज़ से वो बची? उससे बची कि जो हाथ था पीछे। मैं एक तफसीर की तैयारी में वाकया पढ़ रही थी, तो मैं हैरान हो रही थी सहाबा कराम की बातों पे, कि आपने नाम सुना होगा कि हज़रत रबी थे, ये वो बच्चा है कि जिनका बाप थोड़े से पैसे दे के माँ को कहीं चला गया था और कई साल के बाद वापस आए थे, और बाद में आके उन्होंने माँ से पूछा कि किधर हैं वो पैसे, तो कहा जाओ नमाज तो पढ़ाओ, तो वहाँ गए तो बेटा दर्स दे रहा था। बड़े खुश हुए, ये किस खुशकिस्मत का बच्चा होगा। बाद में लोग उसको मिले, घर आए तो पता चला अपना ही बेटा है, तो माँ ने कहा कि जो पैसे दिए थे वो ये हैं ना, इस बच्चे को तालीम दी। यही एक वक्त में जिहाद के लिए जा रहे थे और अपनी तलवार के ऊपर कपड़े की धज्जियाँ बांधी हुई थी, टूटी हुई तलवार थी, और रोमन्स को या से किसी भी बड़ी ताकत के मुकाबले में लड़ने जा रहे थे, तो किसी ने इनको कहा, हंस के मजाक इनको उड़ाया, कहा कि इस तलवार से तुम लड़ोगे, तो इन्होंने कहा कि तुमने तलवार देखी है, तलवार के पीछे जो हाथ है वो नहीं देखा। देखना चाहते हो, लाओ फिर सामने आओ। कहा तुम्हारे पास जो मजबूत से मजबूत ढाल है ले आओ। कहते हैं दुश्मनों के पास जो सबसे मजबूत ढाल ऐसी जैसे लोहे की बनी हुई चीज़ें होती थी, कहा कि वो लाई, और इन्होंने इतने ज़ोर से तलवार मारी कि उनकी ढाल 2 हिस्सों में बट गई। इस तरह से इस्लाम फैलता है। आज वो हाथ नहीं है, तलवारें बहुत हैं। अल्लाह अकबर। 3री दफ़ा आपको कत्ल करने की कोशिश नाकाम हुई। फिर सन 3 हिजरी में गज़वा गतफान, गज़वा नजरान, गज़वा अहद, गज़वा हमरुल असद पेश आए, और हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रदियल्लाहु अन्हुमा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह हुए। आपको पता कि ये दोनों पहले से शादीशुदा थीं, तलाक हो चुकी थी हज़रत हफ्सा को भी, और हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा भी पहले से शादीशुदा थीं और फिर आपके निकाह में आईं। फिर सन 4 हिजरी में हादसे रजी हुआ और बैरे माउना हुआ। ये इतने ज़बरदस्त हादसे थे कि धोखे के साथ अल्लाह के नबी से 70 हुफ़ाज़े कुराम और उलमा को बुलाया गया, जो दीन जानने वाले थे, कि लाएं जी हम दीन सीखना चाहते हैं। आपने खुशी खुशी चुने हुए लोगों को भेजा, 70 लोगों को कत्ल कर दिया। इतना आपको दुख था, 1 महीना तक आप बददुआ करते रहे उन कबीलों के बारे में कि इन्होंने इस्लाम पे इतनी गहरी चोट लगाई। आपको ये बातें सुनकर एहसास हो रहा है दीन के रास्ते की मुश्किलात का? हम तो कहते हैं ऐसे ही उंगली भी घुमाई होगी और इस्लाम आ गया। प्रैक्टिकली आप ज़रा सोचें, एक चोट ना पड़े, ख़त्म हो के दूसरी पड़ जाए, तो फिर कैसा दीन का काम होता है? हम तो पहली चोट पर परेशान होते हैं कि लगता है हमारा काम ही ठीक नहीं, हमारी तरीका ही नहीं ठीक, हमारी कोशिश नहीं ठीक, छोड़ दो, हमारी नीयतें नहीं ठीक। नहीं, ठीक करने के लिए नीयतें ये सारे हादसे होते हैं ताकि खोट जब वो निकल जाए। ये सारी जंगें ऐसे इस्लाम पे पड़ रही थी और मदीना की नौमौलूद रियासत थी। फिर सन 4 हिजरी के अंदर ये वाक़या जब हुए तो उसके बाद उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा से आपका निकाह हुआ। फिर हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रदी अल्लाह अन्हा इंतकाल भी कर गई। अब यहाँ से आप देखें कि आपकी बीवियों में से एक की डेथ हो चुकी है। फिर 5 हिजरी में गज़वा दूमतुल जुंदल, गज़वा बनु मुस्तलक, गज़वा अहज़ाब या खंदक जिसका नाम है, गज़वा बनु कुरैज़ा हुआ और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बुहतान यानी वाक़े इफ़्क हुआ और हज़रत ज़ैनब बिनते हजश और हज़रत जुवैरिया से आपका निकाह हुआ। और ये सारे निकाह और जंगें आपस में बहुत मरबूत थी। कुछ शादियाँ आपकी इसलिए हुई कि किसी कबीले से जंग ना हो, इसलिए उनके दिल को मायल करने के लिए। कुछ शादियाँ इस तरह हुई कि जैसे औरतें वहाँ से कैदियों में आती थी तो आप उनको आज़ाद करके निकाह करके ये लोगों के दिल से बात निकाल देते कि ऐसी औरतें कोई कमज़ोर हैं। जैसे हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी शादी हुई, हालांकि वो गज़वे खैबर के माले गनीमत में आई थी। तो ये एक पूरा अलग टॉपिक है जिसकी यहाँ गुंजाइश नहीं है बात करने की। बहरहाल फिर सन 6 हिजरी में गज़वे अरीनैन और सुलह हुदैबिया के वाक़यात पेश आए और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ। जानते हैं किसकी बेटी थी उम्मे हबीबा? जी आप बताइए। जी शाबाश, अबू सुफियान की बेटी थी ये, और ये अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे और हुदैबिया की सुलह में आपको पता है क्या हालात हो रहे थे। और कभी को किसी दुश्मन के बेटी से भी शादी करता? हम कहते हैं नहीं, लड़की तो अच्छी है, घर वाले पता नहीं उनका कुछ और ही ख्याल है, हम नहीं करते शादी। नहीं, अल्लाह के नबी ने कोई बुरा नहीं समझा। और देखिए दुश्मनी कर रहा है अल्लाह के नबी सल्लम से अबू सुफियान उस वक़्त कर रहा, इसलिए क्या कि उस वक़्त कुफर पे थे, लेकिन बेटी दे दी रिश्ते में। ज़रा कोई आज इमेजिन कर सकता है? ये निकाह के ये तो वहाबी हो गया, इसको मैं बेटी क्यों दूँ, मेरी तो बेटी ज़ाया हो जाएगी। इससे समझें कि अल्लाह के नबी को किरदार की तरफ से बहुत पसंद करते थे। आपका करेक्टर उनको नहीं बुरा लगता था, पैगाम बुरा लगता था, वो छोड़ दो, बाकी तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो। फिर 7 हिजरी में जब सुलह हुदैबिया के नतीजे में जंग ना करने का माहदा हुआ तो आपने फिर इस मौके को गनीमत जाना। हम होते तो छुट्टी डिक्लेयर कर देते, सारे फौजी छुट्टी पे जाओ सारे, क्योंकि अब तो जंग होनी नहीं। आपने कहा अब जंग नहीं, अब दावत होगी। इस मौके पे फिर आपने दावती ख़त भेजे मुख्तलिफ बादशाहों के नाम, जिसके मुख्तलिफ तरह के रिस्पांस मिले। फिर गज़वा गाबा, गज़वा खैबर, गज़वा वादियुल कुरा और गज़वा ज़ातुर रिका पेश आए। आपको बकरी के गोश्त में जहर खिलाने की कोशिश की गई और हज़रत सफ़िया, हज़रत मैमूना रदियल्लाहु अन्हुमा से आपके निकाह हुए और सहाबे कराम के साथ उमरतुल क़ज़ा अदा किया, जिस 7 हिजरी के वाक़ियात थे। खुशियाँ गम साथ साथ चल रहे हैं ना, धूप छाँव लग रही है आपकी ज़िंदगी। फिर सन 8 हिजरी में गज़वा मौता, गज़वा फ़तेह मक्का, गज़वा हुनैन या हवाज़न और गज़वा ताइफ़ के वाक़ियात पेश आए और उम्मे कुलसूम बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई। पीछे 2 हिजरी में आपकी दूसरी बेटी का इंतकाल भी हो चुका था, वो यहाँ जिक्र नहीं है, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। सन 2 हिजरी में हज़रत रुकैया का इंतकाल हुआ था जो हज़रत उस्मान के निकाह में थी। हैरत की बात है, अल्लाह के नबी को 2 बड़ी खूबसूरत फतुहात मिली हैं। वैसे तो बहुत सारी मिली, लेकिन जिसको आप कह सकते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट किस्म की फतुहात, एक बदर की थी और एक तबुक की थी। और बदर की खुशी से वापस आए तो हज़रत उस्मान कब्र पे मिट्टी डाल रहे हैं अल्लाह के नबी की बेटी की इंतकाल होने पे, और जब गज़वा तबूक से वापस आ रहे हैं तो दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का इंतकाल है। ऐसे लगता है कि आप खुश होते थे तो साथ ही चुप कर जाते थे, साथ ही खुशी साथ ही गम। फिर उसके बाद 9 हिजरी में दूसरे गैर मुल्की गज़वा तबूक की मुहिम पेश आई। जिना का इनकरार करने वाली औरत को संसार किया गया, ये कबीला गामदिया की जो औरत थी, और मुख्तलिफ वफूद कबूल इस्लाम के लिए हाजिर खिदमत हुए, क्योंकि तबूक के सफ़र से इतनी धाक बैठ चुकी थी मुसलमानों की लोगों के दिलों में कि वो बिल्कुल इस्लाम से मुतासिर हो चुके थे। तब लोग गिरोहों में आना शुरू हो चुके थे, मक्का भी फतह हो चुका था। फिर सन 10 हिजरी में हज्जतुल विदा अदा फरमाया और 11 हिजरी में 29 सफ़र यानी सफ़र की 29th को पीर के दिन नबी सल्लम के मर्ज़े वफ़ात का आगाज़ हुआ। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर चार्ज के वक्त 63 साल 4 दिन की उम्र में आपकी रूह आपके जिस्म से निकल गई। और 14 रबीउल अव्वल बरोज़ बुध रात के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में आपकी तदफीन अमल में आपको वहाँ दफन किया गया। उस दिन मदीना की गलियां भी रो रही थीं और तिनके भी रो रहे होंगे। हज़रत अनस कहते हैं कि मदीना की हिस्ट्री में सबसे खुशी का दिन वो था जब तलाउ बद्र अलैना की सूरत में अल्लाह के नबी ने मदीना में नज़ूल फरमाया, और सबसे उदास दिन वो था जब अल्लाह के नबी वहाँ से रुखसत हो गए। किसी मेहमान के आने की खुशी होती है ना, साथ ही गम लग जाता है, हाँ इसने वापस भी जाना है, हर दिन लगता है इसने वापस जाना है। अल्लाह के नबी के सजे हुआ 3 दिन तक आपकी डेड बॉडी जो थी वो रखी गई आपके घर में। लोग थोड़े थोड़े लोग 10-10 लोग आते, आपकी चारपाई के इर्द गिर्द दुरूद शरीफ पढ़ते और चले जाते। फिर दूसरे आपका नमाज़े जनाजा मुश्तरका नहीं हुआ, आपको कफन दफन भी दूसरे लोगों से मुख्तलिफ तरीके से दिया गया। और बड़े दिलसोज वाक़यात थे इस मौके पर जो आप रही को मखतूम में सुन सकते हैं। तो ये था एक खुलासा अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का। क्या लगा आपको? साथ साथ इंसान सोचता तो है ना, आज हम जो अल्लाह के नबी के बारे में सोचते हैं या जो उनसे हमारा ताल्लुक होता है, क्या उसमें इतनी चोटें इतने सदमे आते? ये सिर्फ चंद बातें ही मैं कहती हूँ आप लोगों को सुनवा देना तो यंग्स तो जो हैं वो रोने लगेंगे। मैंने सिर्फ एक पावर पॉइंट दिखाया वीकेंड क्लास में हमने परसों सैटरडे को, जिसमें नॉन मुस्लिम्स के व्यूज़ जो उन्होंने अल्लाह के नबी के बारे में बोली हुई बातें वो दिखा के थी। तो लड़कियां बाद में कहती थी कि हमें शर्म आ रही है कि हम तो इतना भी नहीं जानते आपके बारे में जितना नेहरू जानते थे, जितना गांधी जी जानते थे, और जितना बर्नार्ड शाह जानता था आपके बारे में, और जितना फलां और फलां जानता है, हम तो इतना भी नहीं जानते। जिसको आप जानते नहीं उससे प्यार क्या करेंगे? अरबी की एक कहावत है कि हम जिन चीज़ों को जानते नहीं उसके दुश्मन होते हैं। हमें पता ही नहीं ये कागज़ अहम है, हम फेंक देंगे, बाद में शौहर कहेगा वो तो इतने काम का था, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे। आज हम इस दीन की कदर नहीं जानते, इस हदीस की कदर नहीं जानते, और इस कुरान की कदर नहीं जानते। अल्लाह हमारी आंखें खोल दें। अब थोड़ा सा अल्लाह के नबी सल्लम की अज़वाजे मुतहरात के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि बहुत ही ऐसा मौजू है कि जिस पर बातें होती हैं। तो आप देखिए कि नबी सल्लम ने कुल 11 शादियां की पूरी ज़िंदगी में, जिसमें तरतीब पहले बता देती हूँ। हज़रत खतीजा से शादी हुई, फिर हज़रत सौदा से हुई, हज़रत आयशा से हुई, फिर हज़रत हफ्सा से हुई, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा से हुई, फिर उम्मे सलमा से हुई, फिर हज़रत ज़ैनब बिनते हजश, दो ज़ैनब थी आपकी बीवियाँ, याद रखिएगा सरनेम का फ़र्क है सिर्फ। फिर उसके बाद हज़रत जुवैरिया बिनते हारिस, उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान, हज़रत सफ़िया बिनते हुयै बिन अख्तब, और हज़रत मैमूना बिनते हारिस रदियल्लाहु अन्हुन्ना अजमाइन। इन सब से अल्लाह राज़ी हो, इन से शादियाँ हुईं। अगर इसी तरतीब से आप आगे लिख लें तो हज़रत खतीजा बेवा थी आपसे शादी से पहले, हज़रत सौदा भी बेवा थी, हज़रत आयशा कंवारी थी, हज़रत हफ्सा बेवा थी और मुतल्लिका भी थी, हज़रत खतीजा भी बेवा और मुतल्लिका दोनों थी, दो दफ़ा शादी हो चुकी थी पहले। हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा भी बेवा थी, उम्मे सलमा भी बेवा थी, हज़रत ज़ैनब बिनते हजश भी मुतल्लिका थी, हज़रत जुवैरिया बेवा थी, हज़रत उम्मे हबीबा बेवा थी, हज़रत सफ़िया बेवा थी, और हज़रत मैमूना भी बेवा थी। कोई आ रहा है तसव्वुर में कोई रंगीलापन? इतनी औरतों का सहारा बनने वाला शख्स आज करता है कोई शादी? और अक्सर बीवियाँ आपसे उम्र में बड़ी भी थी। फिर आप देखिए कि पहले शोहरों के नाम इसी तरतीब से अगर आप नोट करते जाएँ, एक चार्ट बना लें ताकि आप सारी चीज़ों को साथ लिखते जाएँ तो फ़ायदा होगा। हज़रत खतीजा के जो पहले शोहर थे वो हिंद बिन नबाश थे, ये मुल्क शाम गए थे तो वहाँ इनको कत्ल कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर तिजारत के लिए गए थे और बाद में फिर अल्लाह के नबी से इनका निकाह हुआ। हज़रत सौदा जो थे इनके शोहर का नाम सुकरान बिनते अमर था, इनके बारे में भी कुछ वाक़यात हमें मिलते हैं। फिर हज़रत आयशा, इनके तो कोई पहले शादी नहीं हुई थी। हज़रत हफ्सा के पहले शोहर हज़रत हुनैस बिन खुज़ाफ़ा रदियल्लाहु अन्हु थे, ये मुसलमान थे। हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा के शोहर हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश साहमी रदियल्लाहु अन्हु थे। हज़रत उम्मे सलमा के शोहर अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हु थे। हज़रत ज़ैनब बिनते जाहश, ये असल में आपकी फूफीजाद बहन भी थी, इनकी शादी पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से हुई थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबोले बेटे भी थे, और बाद में फिर इनसे खुला लेकर ज़ैनब ने तो फिर बाद में अल्लाह के नबी से इनकी शादी हुई। और इनकी शादी के आगे आप ख़ास बात लिखना चाहें कि हज़रत ज़ैनब का निकाह आसमान पे हुआ था, अल्लाह के नबी का दुनिया में इनके साथ निकाह नहीं हुआ था। हज़रत आयशा की अगर एक खूबी ऊपर लिखना चाहें तो लिख लें कि हज़रत आयशा की तस्वीर जिब्राइल ने आपको शादी से पहले दिखाई थी, فخر کرتی تھی. اور حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت عائشہ سے شادی کریں. یہ دونوں بیویاں جب بیٹھا کرتی تو آپس میں فخر کرتی تھیں کہ دیکھو میرا رشتہ تو اللہ نے بھیجا تھا اور میری تصویر دکھائی تھی. تو حضرت زینب کہا کرتی تھیں کہ میرا تو نکاح بھی آسمانوں پہ ہوا تھا. پھر اسی طرح آگے آپ دیکھیں تو ام سلمہ ابو سلمہ کی بیوی تھی زینب جی, حضرت جویریہ بنت حارثہ ان کے شوہر مصافح بن صفوان تھے. پھر ام حبیبہ جو تھی ان کے شوہر کا نام عبیداللہ بن حجش تھے. یہ دوسرے ملک ہے ملک شام کافروں کے ہتھے چڑھے تو مرتد ہو گئے تھے یہ. اللہ اکبر. پھر حضرت صفیہ ان کے شوہر کنانہ بن ابی الحقیق تھے. آپ نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہوا؟ حضرت صفیہ جب ان کے نکاح میں تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند ہے جو میرے گھر کے آنگن میں اترا ہے. یہ یہودیہ تھی نا پہلے, تو انہوں نے صبح اٹھ کے اپنے شوہر کو وہ خواب سنایا تو شوہر نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے منہ پہ تھپڑ کا نشان تھا. جب شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو پھر انہوں نے یہ بات سنائی تھی. تو کہا کہ جب میں نے اس کو بتایا کہ یہ خواب دیکھا ہے تو اس نے زور سے تھپڑ مارا اور کہ تو اس نبی کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی ہے. یعنی ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ نبی ہیں لیکن خود یہودیت پہ تھے. اسی طرح حضرت ام حبیبہ کے بارے میں بھی ایک خاص بات لکھ لیں کہ ان کا غائبانہ نکاح ہوا تھا. یہ حبشہ میں تھی ہجرت کر کے گئی ہوئی اس وقت, اور جو بادشاہ تھا نجاشی حبشہ کا اس نے 500 درہم کے عوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے کیا تھا. اور جب یہ واپس وہاں سے آئیں تو پھر سیدھا ان کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا گیا تھا. اسی سے یہ جو فون پہ نکاح یا دوسری جگہ پہ نکاح ہونے کے دلائل ہمیں ملتے ہیں. پھر اس کے بعد آخری حضرت میمونہ بنت حارث ہیں. تو یہ ابی دہم بن عبد العزیٰ کی بیوی تھیں پہلے سے. ان کی عمریں بھی ذرا دیکھتے جائیے اور غور فرماتے جائیے گا, بہت قابل غور نقطہ. اللہ کے نبی کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. حضرت سودا کی شادی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر کے تھے اور سودا بھی 50 سال کی تھی. ذرا غور کریں, خدیجہ سے نکاح ہوا تو اس وقت وہ 40 سال کی تھی اور یہ 50 سال کی تھی, اس سے بھی 10 سال بڑی. پھر حضرت عائشہ سے جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر 54 سال کی تھی اور حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی. اسی پہ لوگ گلہ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں اوپر نیچے باقی نہیں دیکھتے کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی. اور حضرت عائشہ سے شادی میں ایک تو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بے اہمیت حاصل ہے. اس وقت میں لوگ منہ بولے بیٹے کی بیٹی کو بھتیجی سمجھتے تھے تو یہ رسم ٹوٹی تھی آپ کی وجہ سے. دوسری اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنل کیسز دے دیے کہ کچھ حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں بڑی عمر کے مرد کو چھوٹی عمر سے شادی کرنی پڑے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہر شادی ایسے نہیں ہوتی ویڈنگ ہالس میں جا کے اور ہوٹلوں میں اور کارڈ چھپ کے نہیں ہوتی. حالات دیکھیے, خدا ناستہ جنگ لگتی ہے. آپ مثال لیں, خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے کسی ملک میں, وہاں 5-6 سال کی لڑکیاں بچ جاتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ وہاں صرف بوڑھے ہیں. اب ان بوڑھے مردوں کو ان لڑکیوں کو کیسے ان کے ساتھ اب رکھیں گے, کیا کریں, ان کی بیٹیاں بنیں گی, وہ تو جائز نہیں. تو کبھی ایکسیپشن اور کبھی ایسا کم ہوتا ہے لیکن کبھی ہو تو موجود ہے کہ نکاح کر کے ان کی محرم بن کے ان کے ساتھ رہیں نہ کہ غیر محرم بن کے رہیں. پھر حضرت حفصہ سے جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 55 سال کی تھی, حضرت حفصہ 22 سال کی تھیں. حضرت زینب بنت خزیمہ کے شادی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی اور آپ 30 سال کی تھیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 56 سال 56 تھی اور وہ 26 سال کی تھی 26. حضرت زینب کی شادی کے وقت 57 57 اور وہ 36 ایئر کی تھیں. اس سے پتہ چل رہا ہے نا, شادی میں عمروں کا فرق کوئی میٹر نہیں کرتا. ہمارے یہاں تو اتنا بگ ایشو ہے, لڑکی 6 مہینے بڑی ہو جائے مشکل پڑ جاتی ہے. ہائے بڑی لڑکی نہیں, یہ تو پھر قابو ہی پا لے گی. جنہوں نے قابو پانا ہوتا ہے وہ چھوٹی بھی پا لیتی ہیں. بڑی ہے تو کچھ سمجھ کے قابو پائے گی, جب چھوٹی ہیں وہ تو چالی میں ٹالی رہتی ہیں. ہر وقت ہی وہ اپنے ارد گرد ان کو لگائی رکھتی ہیں کہ اب ہمارے لیے یہ کر دو اور وہ کر دو. تو یہ بھی ایک کلچر میں بدلنے کی چیز ہے جو آج بہت بڑی ہے. حضرت جویریہ جو تھی ان سے نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 57 سال 57 ایئرس کے تھے اور حضرت جویریہ کی عمر 20 سال کی تھی. اور لوگ کیوں دیتے تھے اللہ کے نبی کو بیٹیاں؟ کسی سے مانگی تو نہیں, خود ہی دی نا لوگوں نے. لوگوں کو پتا تھا دیکھ اس کو رہے ہیں. یہ حضرت عائشہ کے ساتھ نوٹ کر لیں کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حضرت عائشہ خود تو بھاگ کے نہیں آئی تھی, نعوذ باللہ, ابو بکر نے دی. ابو بکر کو نہیں پتا تھا 56 سال کے بوڑھے شخص سے ایک اپنی 9 سال کی بیٹی کو دے رہا ہوں. وہ تو اس پہ بڑے خوش تھے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا نسب جڑے. اسی پہ پھر رش کرتے ہوئے حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ دی. ایسے لگتا ہے ہر وقت ٹو میں رہتے تھے. اچھا کہ اللہ کے نبی ابو بکر کے داماد بھی. کبھی ہمارے ذہن میں تصور بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی ابو بکر کے داماد تھے؟ کبھی روک ڈالا, بیٹھ جاؤ تمہیں نہیں پتا میں کیا کر سکتا ہوں. ऐसी तो बेहुदा बातें करते ही नहीं है पढ़े लिखे लोग, लेकिन हमारे यहाँ दामाद बन जाओ तो वैसी सर पे चढ़ने वाली बातें। फिर भी अबू बकर की आजजियाँ देखें अल्लाह के नबी के साथ। फिर इसके बाद आप देखिए कि हज़रत उम्मे हबीबा के साथ शादी पे 58 और 36 ईयर का फ़र्क था, हज़रत सफ़िया की शादी पे 59 और 17 ईयर्स का फ़र्क था, और हज़रत मैमूना 59 से 36 ईयर की फ़र्क थी। फिर इनकी शादी की मुद्दतें भी लिखी हैं, तारीख क्या थी, 25 साल थे आपकी उम्र उस वक़्त, हज़रत सौदा आप 10 हिजरी को आपसे निकाह हुआ इनका, हज़रत आयशा से यकम हिजरी, हज़रत हफ्सा से 3 हिजरी, हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा से 4 हिजरी में, उम्मे सलमा से 5 हिजरी में, हज़रत ज़ैनब बिनत हज्ज से 5 हिजरी में, ज़्यादा निकाह के 5 हिजरी में हुए हैं अगर आप देखेंगे तो। फिर हज़रत जुवेरिया से निकाह 5 हिजरी में, उम्मे हबीबा से 7 हिजरी, हज़रत सफ़िया से 7 हिजरी, और हज़रत मैमूना से भी 7 हिजरी में। 7 हिजरी के बाद फिर कोई निकाह नहीं हुआ आपका, आपको पता है 8 से लेके आप सोचें कि आगे जो भी साल थे, क्यों कि आपकी बीवियों ने अल्लाह के नबी का चूज़ कर लिया था। सूरह अहज़ाब में ये आयतें आती हैं कि नबी की बीवियों अगर तुम रहना चाहती है तो ऐसे ही रहो, नहीं तो जाओ हम तुम्हें आज़ाद करते हैं और तुम्हें माल दौलत देते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम अल्लाह के नबी आपको इख्तियार करेंगे। फिर आप देखिए कि तारीख वफ़ात देख लीजिए, हज़रत खदीजा 10 नबी में फ़ौत हुई, हज़रत सौदा जो थी 22 हिजरी में फ़ौत हुई, हज़रत आयशा 58 हिजरी, कितने साल ज़िंदा रही अल्लाह के नबी के बाद, 48 ईयर्स, नस सदी। क्यों छोटी उम्र में लाई गई थी, ताकि अल्लाह के नबी के सामने तरबियत पाएँ, इल्म सीखें और बाद में इल्म फैलाएं। और हज़रत आयशा बड़े बड़े सहाबा कराम और ताबईन की उस्ताद थी, इनके फतावा सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माने जाते थे, और इस वक्त भी हज़रत आयशा दूसरे नंबर पर आती हैं हदीस की रिवायत में। सबसे ज़्यादा हदीसें हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत हैं, और दूसरे नंबर पर हज़रत आयशा से हैं। फिर हज़रत हफ्सा 45 हिजरी में, 45 हिजरी में, हज़रत ज़ैनब जो थी 4 हिजरी में, फिर हज़रत उम्मे सलमा 63 हिजरी में, हज़रत ज़ैनब बिनत जाहश 20 हिजरी में, जुवेरिया 50 हिजरी में, उम्मे हबीबा 44 हिजरी में, सफ़िया बिनत हुयई जो थी 50 हिजरी में, और मैमूना 51 हिजरी में हुई। आप देखें कि काफ़ी लंबा अरसा इन्होंने अल्लाह के नबी के बाद गुजारा हुआ है, किसी ने दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि इनको एक ऑनर मिल चुका था, लिहाजा वो उससे अलग नहीं हो सकती। फिर आगे इनकी टोटल उम्रें भी लिखी हुई हैं, तरतीब से बोल देती हूँ जो तरतीब आप नोट कर रहे हैं। हज़रत खदीजा से शुरू करके 65 साल की टोटल इनकी उम्र हुई, 75 साल, 66 साल, 64 साल, 30 साल, 84 साल, सुभान अल्लाह, 51 साल, 65 साल, 73, 60 और 60। सबसे ज़्यादा तवील उम्र किसने पाई, हज़रत उम्मे सलमा ने। फिर मुद्दत रफाकत कितनी रही इनकी अल्लाह के नबी के साथ, हज़रत खदीजा 24 साल 6 महीने, सौदा 13 साल, आयशा 9 साल, हज़रत हफ्सा जो थी वो 8 साल आपके साथ रहीं, ज़ैनब बिनत खुज़ैमा 3 महीने सिर्फ रहीं, फिर इनका इंतकाल हो गया था। बहुत सखी थी, इनका लकब भी है ज़ुल यदैन, लंबे हाथों वाली, कहते हैं खुद मेहनत मजदूरी करती थी फिर उन पैसों को सदका कर देती थी। उम्मे सलमा जो थी 7 साल आपके साथ रहीं, हज़रत ज़ैनब 6 साल रहीं, जुवेरिया 6 साल, उम्मे हबीबा 6 साल, सफ़िया 3 साल 9 माह, और हज़रत मैमूना भी 3 साल आपके साथ रहीं। और आ गया हदीस की, इनकी मुद्दत जो है कितनी हदीसें इन्होंने की, हज़रत सौदा से 5, आयशा से कितनी है, 2210 रिवायतें। कितने साल रही हैं आपके साथ, पीछे देख लें 9 साल में। हज़रत हफ्सा से 60 हदीसें हैं, हज़रत उम्मे सलमा से 378 और हज़रत जुवेरिया से 7, हज़रत उम्मे हबीबा से 65, हज़रत सफ़िया से 10 और हज़रत मैमूना से 76। फ़र्क क्यों है भाई, यही तो कहते हैं कि इंसाफ ही नहीं करते बीवियों के साथ, क्या फ़र्क क्यों है, किसी से ज़्यादा हदीस से किसी से कम क्यों है। देखिए कि हमारे यहाँ जो ये हदीस के साथ तसव्वुर आता है ना, मेरे भी दिन में कभी बचपन में यही आता था कि अल्लाह के नबी बैठ जाते होंगे और कहते हैं खोल लो कापियाँ, मैं लिखाऊँ हदीसें और लिखो, ऐसे नहीं होती थी हदीसें। हदीस ऐसे जैसे हम सुबह से शाम तक साथ रहे ना, तो कोई जो करे वो लिखते जाए, सहाबा किराम उसको लिख, कोई बोले तो लिख लिया, कुछ मना किया तो लिख लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखते थे तो खुद ही लिखते थे। इसमें जो ज़्यादा शगफ था हज़रत आयशा का, इल्मी ज़हन था हज़रत आयशा के साथ। दूसरी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम حضرت عائشہ کے ساتھ جب ہوتے تھے تو بہت سارے آپ کے جو نجی معاملات تھے وہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے ہمیں ملے ہیں. پھر ایک اور وجہ یہ کہ حضرت سودا نے بھی اپنی باری حضرت عائشہ کو دی تھی. تو حضرت عائشہ کا بنیادی طور پہ ذہن زیادہ تھا, باقی بیویاں ہو سکتا ہے بچوں والی تھیں, ان کی عمریں تھیں. بہت بڑی وجہ یہ کہ حضرت عائشہ اکیلی تھیں, کو بچوں کی ڈسٹریکشن نہیں تھی, بچے لے بھی خوش ہو جائیں گے کہ دیکھا ہم یہ تبھی تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں جو رہیں وہ 9 رہیں. شادیاں تو 11 ہوئی تھیں لیکن دو بیچ میں سے انتقال ہونے کے بعد. اس 5 ہجری میں حضرت ریحانہ بطور لونڈی حرم نبوی میں شامل ہوئیں, اور 6 ہجری کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو بطور لونڈی اپنے حرم میں شامل کیا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اور اسی حضرت ماریہ سے ہی آپ کا بیٹا بھی تھا جو بچپن میں پھر فوت ہو گئے تھے. تو یہ ایک ہلکا سا خلاصہ تھا آپ کی بیویوں کے بارے میں. بیویوں کی بات آئے تو پھر بچوں کی بھی کر لیتے ہیں. یہ آخری بات ہوگی انشاءاللہ آج کی نشست کی کہ آپ کی اولاد کیا تھی, ذریت طاہرہ, پاکیزہ اولاد. آپ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے, بچپن میں ہی وفات پائی. حضرت عبداللہ تھے دوسرے بیٹے, جن کے دو لقب ہیں طیب اور طاہر, یہ بھی حضرت خدیجہ سے ہی پیدا ہوئے اور بچپن میں وفات پائی. اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے, جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی وفات پائی. بعض لوگ جو چار بیٹے کہتے ہیں نا تو ان کو مغالطہ لگتا ہے حضرت عبداللہ میں, وہ طیب اور طاہر دو الگ کو سمجھتے ہیں, لیکن یہ ایک ہی بچے کے تینوں ہی بیٹے آپ دیکھیے کہ بچپن میں فوت ہو گئے. اسی پہ تو پھر مذاق اڑایا تھا ابو لہب نے کہ تو نسل برید ہے. جب آپ کے اس بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو اس پہ پھر سورت نازل ہوئی تھی, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان نشانیک ہو الابتر, کہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے, ہم تو آپ کو حوض کوثر دے رہے ہیں. یعنی لوگ تو صرف بیٹوں میں کھو گئے, آپ کو تو اللہ قیامت کے میدان میں بھی اتنی عزت دے گا. تو بہرحال آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ آپ کی چار بیٹیاں تھیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت ابو العاص کے نکاح میں آئیں. ان کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے ہجرت کرنے کا اور ایمان لانے کا, کہیں موقع ملا تو سنا دوں گی. حضرت رقیہ تھیں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں. حضرت ام کلثوم تھی, یہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں. کب؟ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا. سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تھا, جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں. اور چوتھی بیٹی آپ کی تھی حضرت فاطمۃ الزہرا, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں. آپ کے نواسے نواسیاں کتنے تھے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے حضرت علی بیٹا تھا, نام اس کا نہیں پتا. حضرت امامہ پیدا ہوئے. حضرت رقیہ سے عبداللہ پیدا ہوئے, اور ام کلثوم سے کوئی اولاد نہیں تھی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن, حسین, حضرت محسن, ام کلثوم, رقیہ اور زینب رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ سب بچے پیدا ہوئے حضرت فاطمہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت آپ کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور فاطمہ سے باقی چلی آ رہی ہے. حضرت رقیہ کی اولاد سادات بن رقیہ کے نام سے, اور حضرت فاطمہ کی اولاد سادات بنی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے. اور آل محمد سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو آپ کے پیروکار اور متبع ہیں, خواہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں. تو یہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ ساری چیزیں دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں. تو اس سارے خلاصے سے فائدہ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید آگہی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانیں جیسے کہ وہ تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.